I know he wrote 18 Purans, 6 on Shiva, 6 on Vishnu, and 6 on Brahma. Still, his work was not complete. At the end of the day, he was not feeling at ease because he had not written so many things about Krishna. And this is where he wrote the Bhagavatam to convey to simple people, to devotees, to Bhakt, and to all the seekers what the message of Bhagavad Gita is. And the message of Bhagavad Gita is contained in Srimad Bhagavatam. So that was the essence of what Swamiji spoke yesterday, and the need for bhakti, which is the most simple, the most direct approach to attain Godhead. With these words, I welcome Swamiji, and I am again grateful to Swamiji on behalf of all of us gathered here for being blessed this evening by his presence, and of course by whatever he will teach, a sacred message of the Vedas that we will all receive from him. Swamiji.
Tamirandasya Kyanan Jana Salakya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Banshakalpataru Vasya Kripa Sindhu Vyayivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo 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 Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratisana Gurave Gaurachandraya Radhikaya Itadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo.
थोड़ा सा और आता है
बोलो
भाई हियर हियर
वेल योर बैक
ठीक सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्यतम गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु भाग अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणति पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु भाग अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणति पुष्पांजलि अर्पित। तत्पश्चात उपस्थित सन्यासी ब्रह्मचारी एवं सज्जन हम लोग कल से श्रीमद् भागवत आरंभ किए हैं। यो तो एक महीना पूरा भागवत हो तो कुछ विस्तार के साथ में समस्त लीलाओं का और उसमें क्या निहित उपदेश है कुछ बतलाया जा सकता है। दो दिन में बहुत टच किया जा सकता है, वो भी सब लीलाओं का नहीं, किंतु दो दिन का समय भी मिलना बड़ा कठिन है। बिना पैसे का सुनना, उसमें भी तरह तरह के पकवान, मिठाई,
फिर वो भी दिया जा रहा है और वो भी निमंत्रण पर निमंत्रण दिया जा रहा है, तो भी इतनी बेशकीमती चीज का मूल्य नहीं है। शराब तो बैठे बैठे बिक जाती है, उसके लिए लाइनें लगती हैं, किंतु इतने दिन इतने आदर के साथ में निमंत्रण देने पर भी कुछ करीब, कल तो 100 आदमी करीब थे। जैसे भी हो, थोड़े में ही संक्षेप में ही हम लोग बताएंगे। समस्त भागवत, गीता, रामायण सबका निचोड़ दिया कि निचोड़ा जाए, एसेंस ऑफ ऑल द वैदिक लिटरेचर, श्रीमद् भागवत, गीता, पुराण, रामायण, वो केवल दो नाम, कृष्ण और राम नाम। भागवत इत्यादि समस्त शास्त्रों में कृष्ण को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कहा गया है। कृष्ण ही राम के रूप में आए हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, लीलाओं का अंतर है, सबका यही। राम नाम को अंक है, सब साधन है सुन, अंक गए कुछ हाथ नहीं, अंक रहे दस। यदि प्रारंभ में एक लिख दो, एक, और उसके बाद में जीरा दे दो, तो दस, दस गुण मान बढ़ता जाएगा, फिर दस, एक शून्य दो, एक सौ, एक शून्य
हजार,
इस तरह से बढ़ता जाए, और एक को वहां से हटा दो और हजार शून्य दे, तो उसका कुछ मतलब नहीं। सब कुछ किया जीवन में, सब कुछ, किंतु भक्ति भगवान की नहीं हुई तो सब जीरो हो गया। कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ, किंतु भगवान का नाम का आश्रय लिया तो सब कुछ होगा जीवन में। एक समय देवताओं में इस बात को लेकर के मीटिंग हुई कि देवताओं में किसकी पूजा हो। निर्णय हुआ कि पृथ्वी की परिक्रमा जो करके सबसे पहले आएगा उसकी पूजा की जाएगी सबसे पहले। दुर्गा जी सिंह पर चढ़ करके चली, गणेश मयूर पर चले,
कार्तिक,
सब देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़ करके चले। गणेश जी का तो ऐसे ही शरीर भारी और उनका वाहन है चूहा, रैट। उन्होंने कहा, देखा सब लोग तो चले गए दौड़ करके अपने अपने वाहनों पर, वो लोग तो जल्दी पहुंच करके परिक्रमा आ जाएंगे, मैं ऐसे रह जाऊंगा। बड़े उदास और बड़े खिन्न हो गए। इतने में नारद जी आए, कहे क्यों दुखी क्यों? मैं इसलिए दुखी हूं, ये देवताओं में से कोई ना कोई उनकी पूजा होगी, हमारी पूजा आगे नहीं होगी। अच्छा, यहां पर राम नाम लिख दो। और तीन परिक्रमा कर दो, बस वहीं पर बैठे बैठे परिक्रमा कर दी थी और बैठ गए। राम नाम के अंदर में सारा विश्व है, नाम के बल पर सृष्टि ब्रह्मा करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं, नाम पर ही विश्व टिका हुआ है। नाम में ऐसी भगवान ने शक्ति दी है कि नाम के बल पर सब कुछ किया जा सकता है। वाल्मीकि ने राम के पहले ही राम का चरित्र लिख दिया, ये नहीं महिमा है। मधुर मधुर में तत मंगलम मंगलानाम सकल निगबवल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृत परिगीतम श्रद्धया हे लिया भृगुबर नर मात्रम तार गीत कृष्ण। मधुर मधुर में तत, मधुर से भी मधुर समस्त वेदों का सार, उसका फल वेद का उपनिषद गीता भागवत पढ़ने का फल यह नाम नाम है, कृष्ण नाम है। यदि श्रद्धा से ना हो, बिना श्रद्धा के ऐसे ही नाम कर दिया, भव सागर को तार देगा, इस पर विश्वास रखो। पश्चात देश के अंग्रेजों का के ऊपर में जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है उस पर विश्वास कर सकते हो, तो हमारे वेदों पर, भागवत पर, गीता पर क्यों नहीं विश्वास कर सकते? कुछ लोग भागवत इत्यादि को, वेदों को मिथक समझते हैं। मिथक माने किरे
नोवेल
मिथोलॉजी,
लाइक उपन्यास।
ना बुझे,
लाइक नोवेल,
नो मिथोलॉजी,
मिथोलॉजी। अंग्रेजों ने भारत पर राज्य करने के लिए ऐसा प्रचार किया, किंतु मैथोलॉजी नहीं है, इतिहास एक ऐसे ही कल्पित नहीं है। इसी के बल पर भारत एक समय विश्व का सब विषयों में गुरु था। तो जैसे भी हो, नाम में बड़ी शक्ति है। जय नाम धेय मुनि बृंद गेय जन रंजनाय परमक्षरा कृते तुम अनादरात मना कुदीरितम निखिलो ग्रताप पटल। भगवान का नाम अनादर से भी यदि करो, नो श्रद्धा एट ऑल, इवन इफ यू विल चांट हरे कृष्ण यू विल कम आउट ऑफ ऑल वर्ल्डली
बॉन्डेज
एंड एवरीथिंग। एक भागवत की कथा संक्षेप में हम 10 मिनट में सुनाएंगे। अजामिल चरित्र।
ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। So before speaking, I'd just like to offer my thousands of Dandavat Pranams, lotus feet of my Gurupad Padma, Srila Bhaktivinoda Narayan Goswami Maharaj, to all Vaishnavas and guests, mothers. Welcome. So Srila Gurudev is explaining the glories of the holy name of the Lord, Sri Ram or Sri Krishna. So in Srimad Bhagavatam, in the conversation between Sri Sukadeva Goswami and Parikshit Maharaj, you may know that Parikshit Maharaj had 7 days to live. So the best thing to do for somebody who has 7 days to live is to hear Srimad Bhagavatam. So as the conversation progressed, Parikshit Maharaj, he asked Sukadeva Goswami a question. He asked, what should a person do who has committed so many sinful activities within this life so that at the time of death he can be relieved of these sinful activities. Because in the previous canto, then Sukadeva Goswami had explained that somebody who performs sinful activities within this life, he must have to suffer according to those sinful activities. And in the fifth canto of Srimad Bhagavatam, it's explained so many types of hellish situation that sinful people must experience in order for their purification. So he asked this question, how can somebody who has performed sin become free from that sin? So in this way, Sukadeva Goswami, he explained the very ancient history of Sri Ajamil. So Ajamil, he was a very pious Brahmana. He lived in a very beautiful city and he was always engaged in very pious activities, doing puja, so many Brahminical activities. He had a very chaste Brahmin wife. And in this way, he was living his life in a very pure way. It says in Bhagavatam that he was pure. So one time, due to his great misfortune, he was walking in the forest, and he saw two very low-class people, anyway engaged in low-class activities, one man and one woman. The lady was a prostitute, and they were enjoying in the forest in this way. The lady was partially clothed, they were laughing, they were intoxicated. So Ajamil, seeing this, in his heart, he still had some material desires, and these material desires were awoken by seeing this in the forest. So immediately he became very disturbed, and his mind was completely fixated with this prostitute. So as time went on, he decided he should engage this prostitute as a servant in his house. And then one thing led to another, and ultimately he married that prostitute, even kicking out his own wife. His own very good, chaste wife, he kicked her out. So he spent his entire inheritance that he had got from his father trying to maintain this woman, and they had so many children together. They lived in this way, and he maintained this situation by various types of sinful activity, by cheating, by gambling, by stealing. And in this way he incurred more and more and more sin and became more and more degraded. So he had many children.
Ten.
He had 10 children during this time. And at the age of 88 years old, he had his last child. So at that time, fortunately for him, there were some sadhus passing nearby to where he lived, and they suggested that he name the child Narayan. Because we see in Indian culture, in Hindu culture, then the parents, they quite often name their children Krishna Das, or Narayan, or Radhika, like this. Because this helps remembrance of the Lord. So the sadhus, they advised Ajamil, he should name his child Narayan. So Ajamil became completely besotted and obsessed with this child. He was always playing with the child, watching its very endearing activities and listening to the very broken words of the child. And he became completely in love with this child. He was always chanting, "Oh Narayan, come here. Narayan, come and play. Narayan, do this." So we can understand, as Srila Guru Maharaj just explained, that the name of Bhagavan, Ram, Krishna, Bhagavan has many names, the name Narayan, this means the shelter of all living entities within the entire Brahmanda, this name Narayan. So this name Narayan has very powerful potency. So even by just chanting this name, even though not thinking of the Supreme Lord, he's thinking about his child, he slowly he began his process of purification. He began to attain some pious credit, we call Sukriti. So as time went on, as I said, he was 88 years old. He had forgotten about death, but unfortunately death never forgets about anybody. So death came for him one day, and he became very fearful. What did he see? He saw, as he was dying, he saw three very fearsome figures appeared before him. Very contorted faces, hair standing on end, so much inauspicious. These are the Yamadutas. Anybody heard of Yamadutas? Put your hand up. You heard of Yamadutas? Yamadutas, they are the servants of Yamaraj, the servants of the god of death. We have seen them many times, but we have forgotten. So he saw the Yamadutas and became extremely fearful. The Yamadutas, they were equipped with ropes and hooks. Because what the Yamadutas do is they take the soul in the subtle body and they drag the soul out of the gross body and drag the soul down to hell, where he is given a punishment body and where he remains in hell from that much sinful activity is performed, that much time he will have to remain in hell. So Ajamil became extremely fearful, and as the Yamadutas, they were about to pull the soul out of the body of Ajamil, he called out with tears in his eyes, Narayan, 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 like this. But he was thinking of his son. Because it's explained in Bhagavad Gita, Yam Yamba Pismarambhavam Yajanti Antikalevaram. Means whatever you are absorbed in at the time of death, that destination you will definitely achieve. So whatever we do during our life, the state of our consciousness at the time of death, that determines our next destination. So fortunately for Ajamil, his son was called Narayan, and he called the names of Narayan. Actually, just a side thing, there were three Yamadutas. Why there were three Yamadutas? Because he had committed sins by body, mind, and word. So three Yamadutas appeared. And when he called the name Narayan, then four very beautiful personalities appeared. Why four? Because in the name Narayan, there are four syllables. Na, Ra, Ya, Na. So four very beautiful personalities appeared with helmets and lotus flower, chakra, conch, and club, and bow and arrow. Very beautiful, effulgent with four arms. They appeared, and just as the Yamadutas, they were about to pull the soul out from the body of Ajamil, they shouted, stop! You shouldn't do that. This is against Dharma. You should not do this. So the Yamadutas, they'd never seen the Vishnudutas before, and they became a little upset. They said, who are you to tell us that we cannot do this? We have the order of our master, Yammaharaj, Dharmaraj, or Yammaraj, to perform this activity. This man, he was a very pious Brahmana, but in knowledge, he fell down and he performed so many sinful activities. Actually, one thing is to perform sinful activities in ignorance, but if we have read scripture and we understand what is sin and what is piety, then we still perform sinful activities, then this is even worse. So they said this person, he knew everything, but still he performed those activities. So according to the rules of Yamaraj, we are taking him to hell. So the Vishnudutas said, actually we are the servants of Sri Narayan. And they explained, this person has actually chanted the holy name of Narayan. Therefore, he is no longer with sin. Means that even though he was thinking about his son, even though he was thinking about his son at the time of chanting Sri Narayan, and the name of Narayan is so powerful in itself, it is powerful enough to destroy all the sinful activities within this birth, and also all the sinful activities in millions and millions of previous births. So just by chanting the name Narayan, even not meditating on Krishna, this is called Nam Abbas, means shadow of the holy name. Means if we chant this name of Krishna in a joking way, for musical entertainment, what else? To indicate something else, like he was chanting to indicate his son, this is called Nam Abbas. So even though he didn't chant the pure holy name, he chanted Nam Abbas, and the Vishnudutas, they appeared there. So a very long conversation went on between the Vishnudutas and the Yamadutas, and Ajamil, he's lying there, and he's listening to this whole conversation. So Ajamil, due to listening to the pure narrations, Harikatha, coming from the Vishnudutas, then he had a realization, oh actually, human form of life is not for sense gratification. This sense gratification actually is even available in animal species. Eating, sleeping, mating, and defending, we do the same things as the animals. But But actually, in the human form of life, we can do one more thing, which is re-establish our connection with the Supreme Lord. So Ajamil, hearing the discussions of the Vishnu Dutas, when they departed, then he decided, I must immediately begin to do Krishna Bhajan, to perform Aradhana of Krishna. So immediately he left that place and he went to Haridwar. He stayed there, and in deep meditation he fixed his mind on the lotus feet of Sri Vishnu, Sri Narayan. And ultimately those Vishnu Dutas, they came back with a golden chariot and took him to Vaikuntha. So it's mentioned in Srimad Bhagavatam that even if a very sinful person, even he may have no realization whatsoever of Krishna, but if at some point he decides that I should surrender to the lotus feet of Krishna, and he develops some ruchi, some attraction for the Naam, Roop, Gun and Leela of Krishna, then that person, he will not see the Yamadutas even in dreams. So Ajamil, he chanted Namabhas, means a shadow of the holy name, and he got this type of result. Means he got liberated from this, just one time chanting this Namabhas. So what to speak? Srimad Bhagavatam says, what to speak of somebody who with great faith and devotion regularly chants the holy name of Sri Krishna, Sri Ram, Sri Narayan. So it's said that in Kali Yuga, Harinam, Harinam, Harinam eva kevalam, kalo nasti eva, nasti eva, nasti eva, gati anyata. Means that there is no other way, no other way, no other way in Kali Yuga to attain the supreme auspiciousness other than chanting the holy names of Sri Bhagavan. One more thing. But where do these holy names come from? Maybe we can read in the book, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. We can understand by reading or by somebody explaining to us that this Harinam is very powerful. But actually it's explained in Shastra that this mantra, if it is not received in one of the four bona fide sampradayas from a representative of that sampradaya, from a pure devotee, then this mantra will not bear fruit. So it is beholden on us to seek out that personality who has the pure name within his heart and receive that pure holy name from him. Thank you very much. Vancha kalpadarubhyascha kripa sindhubhayavacha patitanam bhavanibhyo vaishnavibhyo namo.
Very good. कल हम लोगों ने भक्ति की परिभाषा बतलाई थी. अपने तन से, मन से, वचन से, सारी इंद्रियों से जो कुछ भी किया जाए, सेवा किया जाए कृष्ण की, राम की, तो उसे भक्ति कहते हैं. नृसिंहदेव एटमंस अपीयर्ड एंड डिसअपीयर्ड. प्रहलाद महाराज कुड नॉट सर्व हिम, ही कैन नॉट सर्व बिकॉज ही इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हे इज एवरीव्हेयर. He never
becomes tired. Becomes tired.
Never became tired.
Never tired, not hungry,
not thirsty.
Not thirsting. Nothing. How he can serve? He sees it Supreme Lord in everyone. And in everyone he sees Krishna. But he cannot serve. So this is Jnani Bhakta. More superior, Ambarish Maharaj, whose charitra has been given in Srimad Bhagavatam. He engaged his all indriyas, senses, in the service of Krishna. How? You can, Achyutananda Prabhu, kindly speak. 10 minutes.
Om Jnanati Nirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Vancha Kulpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evaja Patitanang Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Sabse pehle main Madhya Gurupad Padma ke Abhishth Charna Kamalon mein apna अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणापी प्रणति ज्ञापन करता हूँ. तदनंतर सर्व सन्यासी भक्तवृंद ब्रह्मचारी श्रोत्र मंडली सभी को मेरा प्रणाम.
बेटर स्पीक इन इंग्लिश ऑल विल दिस
मुझे ऐसा स्पीक इन इंग्लिश. सो बिफोर आई बिगिन एक्सप्लेनिंग दिस अम्बरीश महाराज कथा I just want to say one or two things, some background information. Shastra, the essence of all Shastra, by which we can experience happiness, this is called dharma. So there are two types of dharma. One is called aparadharma and one is called parodharma. Aparadharma most of us know in our life. Some of us think we serve our mother and father, this is dharma. Some of us are Christians, we think this is a Christian dharma. Some of us, so there's Sivale, there's yaj going on in Sivale, go to Sivale and do yaj, this is dharma. But these are all called aparadharma. Parodharma is explained in Srimad Bhagavatam. Savai pumsam parodharmo yato bhaktir adhoksaje ahaitukya pratihata yatma samprasita. That highest dharma by which we can actually be happy, this is called bhakti. And that bhakti is performed to Bhagavan Shri Krishna. And the definition of that bhakti, Maharaj has given, Gurudev has given yesterday, anya bhilashita sunyam jnana karmadhyan avritam anukulyena krishna anushilanam bhakti ruttam. All endeavors performed by our mind, body and words, free from any material desire, to please the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, this is bhakti. And so those who actually perform this bhakti, this is what Srimad Bhagavatam is about. What are the practical examples of bhakti? We can go on deliberating about bhakti for many years, months, lifetimes, but the practical example of who performs bhakti and how bhakti is to be performed, this is given in Srimad Bhagavatam. So, many years ago, there was a king who ruled over the entire earth, all seven continents, the seas, this entire earth he controlled, and his name was Ambarish Maharaj. Ambarish Maharaj was a perfect devotee of the Lord, Sri Krishna. And as a result, he had no desires for his kingdom, his family, his wealth, etc. Bhagavatam is explained, Savai Manaha Krishna Padaravindayor. Vachamsi Vaikuntha Gunanu Varnane Karir Harir Karo Harir Mandana Marjanadishu Sridim Chakara Achyuta Satkathodi. With his mind, he always remembered the lotus feet of the Supreme Lord. And with his words, he always glorified him. With his hands, he himself, being the king, he swept the Lord's temple. And with his ears, he heard the glorious katha of Sri Hari. So this is actually bhakti, practically speaking. And just as Ambarish Maharaj is performing, we should also in our own lives adapt all of these activities. Every endeavor we do in our life should ultimately be for the satisfaction of the Supreme Lord. Otherwise, Gurudev said, it's just our life is a bunch of zeros. The moment we put the Supreme Lord as our priority, then we add the one, and all those zeros becomes tens and millions and hundreds of billions of pious activities. So this Ambarish Maharaj would perform so many yajñas, Ashwamedh yajña, Putreshti yajña, Agnishtom yajña, so many yajñas were performed to please the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. One day, he decided he would perform this vrata called Ekadasi vrata. I don't know if you know Ekadasi vrata. Just like here in Mauritius, on Amavasya Purnima, you go to Shiv temple and you do some vrata for Shivji. So in our Vaishnava term, on Ekadasi day, we perform vrata to please Bhagavan Shri Krishna. So he said, this whole year, every Ekadasi, I will fast completely, not even taking water. And so the next year came in this Kartik month, maybe you know Kartik month, very auspicious month for performing devotional service to the Supreme Lord. In this Kartik month, he went to Vrindavan, Ambarish Maharaj, and he bathed in Yamuna River, which is the very holiest of all holy rivers in India. And he installed the deity of Sri Radha and Krishna. And he performed all the worship, offering flowers, dressing the deity beautifully, making wonderful preparation of bhog to be offered. And then at the end of all this, he worshipped the Brahmanas. And he gave 600 million cows in donation to all the Brahmanas. And at that point, when we follow Vrata, there's a time that the Vrata must be broken. This is called Param Samay. If you do not break your vrata at the appropriate time, then it all goes in vain. So this time, the moment he was going to break his vrata, then one Durvasa Muni came. I don't know if you know Durvasa Muni. Durvasa Muni is known for being a very short-tempered person. If you don't please him immediately, then by his curse he can destroy the entire creation. So Ambarish Maharaj saw Durvasa Muni came in. And immediately he offered him a seat. Oh, Durvasa Muni, please take a seat. And he brought so many nice paraphernalia to worship Durvasa Muni. Then he said, oh, Durvasa Muni, will you please take some prasad, take some bhojan in my palace? This is very auspicious. By seeing you, my whole vrata has become successful. Durvasa Muni says, first I must go and take bath, perform my ceremonies, my Sandhya Vandana Ityadi. So he went to the Yamuna River, Durvasa Muni left. Ambarish Maharaj thought, this is the time for breaking my vrata. But I have not fed Durvasa Muni. So without feeding my guest, how can myself take anything first? So he was in a dilemma, a big problem came upon Ambarish Maharaj. He did not know what to do. Because on one hand, he has his vrata to maintain, and on the other hand, a guest. And Atithi Devo Bhava, if you do not please the guest, then this is also a very inauspicious thing. So then he consulted his Brahmana ministers. He had many ministers. He said, I'm in a dilemma. What should I do? So the conclusion was, you take some charanamrit of Bhagawan. Because this is not food, but at the same time, you can maintain your vrata and also Durvasa Muni. It will be okay. So you can maintain your vrata appropriately, and you can also show hospitality to the Durvasa Muni. So he did that. He took some charanamrit and meditating upon the Lord, his vrata was finished. Then Durvasa Muni came back from Yamuna River. And Durvasa said to Ambarish, look at this cheater. He is not a devotee of the Lord. He himself has taken something before me. And I'm Durvasa Muni. So he was very angry. He was frowning, using very harsh language towards Ambarish Maharaj. And he said, look, I will punish you for this act of inhospitality to me. So from his, he has jata, he is a muni, so he has all these, what we call dreadlocks. From his hair, he pulled out one jata and he threw like this at Ambarish Maharaj. And the moment he threw this, then immediately appears one rakshasi, we call kritya, some type of demoniac personality. To punish fiery demoness. And when this fiery demoness appears from the hair of Durvasa Muni, then the whole world begins to tremble. Demigods are shaking. No one knows what to do. Ambarish Maharaj is a devotee of the Lord. He's not disturbed by anything. So he remains there like this towards Durvasa Muni. And Bhagavan Sri Krishna, seeing this, he cannot tolerate any act of ill behavior towards his devotee. So immediately he sends a Sudarshan Chakra. The moment the Sudarshan Chakra comes, it destroys this demon. that has been produced by Durvasa Muni and saves Ambarish Maharaj. Then this Sudarshan Chakra starts following Durvasa Muni because he produced this demon to punish Durvasa Muni. So now Durvasa Muni becomes very scared. He does not know what to do. Sudarshan Chakra is following him behind him and he's running away very fast. Almost it's touching him, Sudarshan Chakra. And that Sudarshan Chakra is so powerful, by the effulgence of this Sudarshan Chakra, he's being burnt. He does not know what to do. So he's running here and there. All the 14 worlds, he's moving up and down, trying to escape from this Sudarshan Chakra. But Durvasa finds no escape. He does not know where to go, what to do. So he goes to Brahmalok and says, "Oh Brahmadev, please protect me. This Sudarshan Chakra is following me. I am about to be destroyed. What do I do?" And Brahmalok sees the Sudarshan Chakra and he becomes scared. He says, "I don't need this trouble on my head. You go somewhere else. I cannot save you. This is Vishnu Bhagawan. What can I do in front of Sudarshan Chakra?" So Ambarish Maharaj goes to Sivalok, Mahadev. Durvasa goes to Sivalok and says, "Sivji, Mahadev, Devadi Dev, please help me. Help me escape from this Sudarshan Chakra." Sivji Maharaj does pranam to Sudarshan Chakra. He says, "I also cannot do anything in front of the Supreme Lord. Who can stop his desire?" He says, "My advice to you is you must go directly to Bhagawan Narayan, Sri Vishnu, and ask for his forgiveness." Durvasa Muni says, "Okay, I must listen to this. There's no other advice I can follow. I'm about to be destroyed." So he goes to Vaikunthalok. And he does full Sashtang Dandavat Pranam of Vishnu. And he says, "Oh Lord, please save me from your Sudarshan Chakra. I cannot tolerate its heat. It's burning me. What do I do?" He says, Brahma cannot save you, and even Shivji cannot save you, and I also cannot save you. Vishnu himself says, "I cannot save you." Because he says, "Aham bhakta paradhino. Aswatantra ivad vipra." He says, "I am under the control of my devotees. Aham bhakta paradhina. I am not independent. Even though I am the Supreme Personality of Godhead, I am not independent. I am aswatantra. And I can never give up my devotees. They have given up everything for me. They have left their house, their family, their possessions, and fully surrendered unto me. So what can I do?" He says, "Just as a wife, by her service to her husband, controls and pacifies her husband, similarly my devotees, by their service to me, have controlled me. Sadhunam hridayam mahyam sadhuvam hridayam tuham madanya tena jananti naham devyo managapi." He says, "My heart, sadhu nam hridayam mahyam, the heart of the devotees is me. I reside in the heart of my devotees, and my devotees reside in my heart. I do not know anyone else but them, and they do not know anyone else but me. So if you want to escape this Sudarshan Chakra, then you must go back to Ambarish Maharaj and ask for his forgiveness." So from Vaikunthalok, Durvasa Muni comes down to Sivalok, Kailash, down to Brahmalok, and finally back to the lotus feet of Ambarish Maharaj in this planetary system. And he grabs his feet, offering full Sashtang Dandavat Pranam. And he says, "Prabhu, I have created a great offense at your feet. Please save me from this burning of the Sudarshan Chakra. I have no other way to escape this." Ambarish Maharaj is a pure devotee of the Lord, and he feels very humble. He said he cannot even tolerate Durvasa is doing pranam to him because he thinks that Durvasa is so many million times higher than me. So then he offers so many prayers to Sudarshan Chakra. And he says, "Please, if I have done any amount of pious activity that has pleased the Supreme Lord, then please remove this Sudarshan Chakra." And so by the prayers of Ambarish Maharaj, Sudarshan Chakra has gone away. And the whole time that Durvasa has been running to Brahmaji, Sivaji, and to Bhagawan Sri Vishnu, Ambarish Maharaj has not eaten anything because he's waiting for Durvasa Muni to come back to take some bhojan with him. And 1 year has passed and Ambarish Maharaj has not even touched a drop of water. So Ambarish Maharaj says to Durvasa, please, you will please take some bhojan. And Durvasa says, Ambarish Maharaj, I've committed a great offense to you, please forgive me. He says, what is there that is impossible for the devotees? One who is a devotee of the Supreme Lord, nothing is impossible for him. And because of that, you have saved me. And thus, Durvasa left that place after taking his prasadam. And he was glorifying Ambarish Maharaj. And he says, from this day forward, your glories will be sung in all the 14 worlds. And anyone who hears this transcendental pastime between Ambarish Maharaj and Durvasa Muni, he will become a pure devotee of the Lord in this life or the next. But this there is no doubt. So vancha kalpatarupyasya kripasindubi vacha patitanam pavanevya vaishnavevya namo.
इस प्रकार अम्बरीश महाराज सुपीरियर देन प्रहलाद ही कैन सर्व बाय हिज ऑल बट ही साधक नॉट सिद्ध हनुमान इज सिद्ध साधक हनुमान ऑलवेज सर्विंग राम ऑलवेज डे नाइट. In the battle of Ravan, Lanka Vijay, in all round, everywhere, he fought for Ram, and he also messaged his buddy and serving him in so many ways. Ek samay ki baat hai, Sita ji स्नानागार में स्नान कर रहे. She was taking bath in bathroom. In the same time, Hanuman went there. Mother, what are you doing? She told, I am taking sindhu so that my husband should be
long life.
Indeed.
So, जब सीता जी वहां से चली आई सभा में, तो हनुमान जी स्नानागार में घुसे. He went in bathroom and he took all the oil and all the sindur mixed and took in his whole body and went in the courtyard of
Royal Assembly of Lord Ram.
All were laughing, Ram also, Sita also. Then Ram asked him, why you have taken sindur in your all body? Kyon liya? Toh Hanuman ji ne kaha, jadi ek ang mein sindur dene se Bhagwan Sri Ramchandra Sita ke pati chiranjivi ho sakte hain, sukhi ho sakte hain, toh main apne sare badan mein lagaunga, sare shareer mein lagaunga, jo aur bhi good. लॉन्ग लाइफ हो और सुखी रहे,
इसलिए कहीं भी हनुमान जी सब लाल रंग के हैं.
हाँ, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है और लाल रंग दिया जाता है. एक समय रामचंद्र जी के दरबार में सभा में सब सारी सभा बैठी हुई थी. उस समय में सीता जी ने लंका विजय में हनुमान जी जो वीरता दिखलाई और उन्होंने काम किया, उसके बदले तो कुछ दिया नहीं. उस समय कोई अलंकार कुछ नहीं था. अब यहाँ पर आज उस सभा में उन्होंने अपनी 9 लाख की मड़ियों की माला हनुमान जी के गले में डाल दी. जब डाल दी तो हनुमान जी बंदर स्वभाव से एक मणि को लिया और दांत से काटा, देखा और फेंक दिया. फिर दूसरी मणि निकाला और देखा और फेंक दिया. तीसरी, इस तरह से सभी फेंकने लगे. ऑलमोस्ट ऑल ही
थ्रोइंग.
तो रामचंद्र जी हंसे, तुम क्यों ऐसा किया? सीता जी इतने आदर से तुमको नौलखा हार, मणियों का हार दिया और तुम इसे फेंक रहे हो। हनुमान जी ने कहा, मैं देख रहा था इसके अंदर में राम नाम है कि नहीं, यदि राम नाम नहीं है तो इसका कुछ मूल्य नहीं। तो तुम्हारे हृदय में है, बस उन्होंने नख लगाया और फाड़ दिया। देखा उनके रोम रोम में राम 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 हो रहा। यह हनुमान जी की महिमा है। समस्त अंगों से सब समय में जहां जब जरूरत हुई वो सेवा करते थे। यहां तक कि हनुमान जी रामचंद्र जी अयोध्या में लौट आए लंका विजय कर, तो भी उनके साथ में रहते थे। किंतु हनुमान जी इतने बड़ी सेवक होकर के भी राम को आलिंगन नहीं कर सकते, राम के कंधे पर नहीं चढ़ सकते। चढ़ेंगे हनुमान अपने कंधे पर चढ़ाएंगे, किंतु उनके कंधे पर नहीं चढ़ेंगे। हनुमान जी कभी अपना जूठा राम को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। कुछ डिफेक्ट है सेवा में, कुछ कमी है, डिफेक्ट नहीं कमी है। पांडवों को लीजिए, पांडवों में अर्जुन कैसे सेवा करते हैं, किस प्रकार अपनी सेवा में नियुक्त युक्त करते हैं, माधव महाराज जी संक्षेप में बतलाएंगे। और ये बहुत कहना है। मैं जो कहता हूँ हिंदी में समझ में आता है?
हाँ ठीक।
Hare Krishna. So as you heard from Srila Gurudev, that in Hanuman's service there is some lacking in his service. Pandava was a superior to Hanumanji. How come? Lord Krishna, he arranged marriage ceremony of his sister with Arjun. So Arjun became brother-in-law and Krishna also became brother-in-law of each other. So by this way, Arjun has so much intimacy with Krishna. They eating same plate, sleeping same bed. Once, Narada Rishi came to visit Arjun in Indraprastha. Then when he entered there, he saw a very strange thing. What he saw? That he became very wonder. In same bed, Arjun and Krishna are sleeping. And Krishna's head and Arjun's head in not same direction, opposite way. Krishna's lotus feet going through Arjun's chest, and other hand Draupadi and Subhadra Devi, they are doing chamar, fanning Krishna's lotus feet. In other hand, Krishna's lotus, Arjun's lotus feet passing through Krishna's chest, and they are Draupadi Devi. So other hand, Arjun's lotus feet passing through Krishna's chest, and Satyavan and Rukmini fanning his lotus feet. Arjun's body coming out, Ram, Ram, Krishna, Krishna, Krishna. Sing this, the Nazdalo, he is the best devotee in the whole world of Lord Krishna. I never seen that somebody sleeping and promise all his power. Name is coming out, Krishna, Krishna. Not only that, when Subhadra was young age, not married yet, so Baladev Prabhu was the eldest brother, so his desire that Subhadra will marry with Duryodhan. But Vasudev Maharaj, Devaki Devi, and Krishna all want that Subhadra will marry with Arjun. So Baladev Prabhu is eldest brother, so none can go against him. So one day Krishna called Arjun. Oh Arjun, which I instruct you, you have to follow my order. Krishna told to Arjun, you be in a sannyasi form and be on one side of the Dwaraka, then everybody will go there. In that time, you can kidnap Subhadra Devi. Arjuna, okay. Arjuna was very handsome like Krishna. He was on one end of the Dwaraka and doing his austerity, his own all activities. So all spread everywhere like forest fire. The very great sadhu has come in Dwaraka. Even Balarama Prabhu went there to do pranam, touch his feet, and Arjuna give him blessings. All the Draupadi, Satyabhama, Rukmini all went there. So now, when Draupadi went there, Subhadra went there with chariot for darshan, and Arjuna was ready to kidnap her. When Draupadi went there, Arjuna kidnapped her and ran away from Dwaraka with his chariot. Then every time any princesses will go anywhere, there's some bodyguard there. Like nowadays ministers has bodyguard. So one group of army there, they inform Baladev Prabhu and Krishna. Then that was not a sadhu, he was fake sadhu, he was Arjun, he kidnapped Subhadra. Then immediate Baladev Prabhu became very angry. What? Arjun kidnapped my sister? And Krishna is like calm and quiet, not telling anything. Balarama Prabhu ordered his four type of soldiers, go immediately and kidnap Arjuna. Then all became very ready and went there to catch Arjuna. And so Arjuna is very clever because he taught by Krishna. He gave the reins of the horse to Subhadra Devi and he became his guard and took the archer, bow and arrow, and Gandiv Dhanush. Then Balarama Prabhu told Krishna, you have no anger at all. Our only one sister, and Arjuna kidnapping from here, and he became calm and quiet. Then Krishna told, oh my dear brother, please look carefully. If you want to kill Arjuna, no problem. I have no objection about that. But look, who is kidnapping whom? I think Subhadra kidnapping Arjuna, not Arjuna kidnapping Subhadra. Look, who has the reins of the horse? Subhadra. That means Subhadra kidnapped Arjuna. So what is the fault of Arjuna? Moreover, already their mind mixed together. If you kill Arjuna, then your sister will be widow. What you like? Your sister will be whole life widow? Or you like that they will marry each other? And okay. Then he called them and did wedding ceremony very nicely. Then Balarama Prabhu told, oh Krishna, why not told me as before? Then Krishna told, how I can say this? Because you desire to marry with Duryodhana. But they have exchanged their mind each other, what can I do? So this way, Krishna became completely captivated by Arjuna. During Mahabharata battle, I think all of you never Mahabharata battle and Ramayana, maybe you have seen the serial. So according to Indian Vedic tradition, whoever invite you first, you have to go their camp for fighting. So one day, Shakuni sent Duryodhana to invite Krishna for Mahabharata battle on behalf of them. Duryodhana went there and Duryodhana is Abhiman, then I am his relative, means Duryodhana's daughter and Krishna's son, Sambha, and Duryodhana and Lakshmana marry each other. So Duryodhana went and sit towards Krishna's backside, towards head side. And Arjuna came and saw, oh my God, Duryodhana already there? And he sat under Krishna's feet. So according to Vedic tradition, who will go first, that man have to go their camp. Another tradition is that to whom you see first, you have to go their camp. And moreover, when somebody sleeping woke up, he will not look towards back, he will look towards his feet in front. This is the rule, vision will go there. Actually Krishna was not sleeping, he was waiting for Arjuna. When Arjuna came after a few minutes, oh Arjuna, you have come? Oh, very good, thank you to come here. Then Duryodhana told, oh Samdhi, I have come prior to Arjuna. Okay. Then both came in front, what can I help you? Duryodhana told, as you know, Mahabharata battle is going to be start very soon. So I want that you will fight on behalf of us. Then Krishna told, but I have seen Arjuna first. The Buddha said, no, I came first to you. So my priority is there. Krishna told, okay, listen, I have one condition. In one hand, my all armies will be there and they will fight. Other hand, I have promised I will not take any kind of weapon during Mahabharata battle. So you lie to me or my whole army. Duryodhana thought, oh my goodness, what shall I take Krishna? He will not fight, I have to feed him, I have to notice him, I have to engage so many servants for him. Better I can take army because I need, who will fight on behalf of me. Then Duryodhana told, oh Krishna, Arjuna has so much intimacy with you and Arjuna mind with you so much, I prefer to take your army. Krishna told, so be it. And Duryodhana returned. When they walk out from his room, then Arjuna and Krishna hug each other. Arjuna told, oh Prabhu, I have no need any kind of army, no need any kind of weapon, I am alone, heavier than whole world. So, you only by my charioteer and control my mind, that's enough, nothing else. So by this way, Krishna became charioteer of Arjuna, and by this way, not only that, he served Arjuna, Bhim, Nakul, Sahadeva, Yudhishthira, and especially Draupadi Devi, and he massaged his horses even also. You know how he protected the shyness of Draupadi Devi, I told yesterday. So after that, we listen more from Srila Gurudev Lotus Leaf about Prematur Bhakta, Hanuman called Premi Bhakta, and Pandavas called Prematur Bhakta, Prempar Bhakta. Now, in this gradation, this Prematur Bhakta Uddhavji will listen from the lotus leaf. Hare Krishna. Bancha kalvataru bhascha kripa sindhu bhai vacha patitanam pavanibhu vasnavibhu namah.
Yadapi Arjuna aur pancho bhai Draupadi बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, संदेह नहीं, मित्रवत व्यवहार करते हैं, सखा जस, एक थाल में खाते हैं, एक पलंग पर सोते हैं, यहाँ तक कि कृष्ण उनके चैरिएटर बने हैं। किंतु एक बात है, जिस समय कृष्ण ने विश्वरूप विश्वरूप दिखलाया, अर्जुन हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, he folded and began to pray. I told you, Sakha, friend, but really you are not my friend. आप हमारे मित्र नहीं हैं. आप हमारे मित्र नहीं हैं, आप विश्व ब्रह्मांड के रचयिताओं के रचयिता हैं, और हाथ जोड़ करके खड़ा हूं, आज से मैं आपको जो सखा कहा है इसके लिए क्षमा मांगता हूं. उनमें ईश्वर की बुद्धि आ गई, किंतु इनसे बड़े जो हैं उनके संबंध में बतला रहा हूं. Those who are superior than Hanu, five brothers and Draupadi, I'm telling about them. Uddhav is superior. Uddhav ji superior. Krishna ke sakha hai, mitra hai, shishya hai,
mantri,
senapati hai,
mantri,
advisor, mantri hai, sab kuch hua. जहां जहां कुछ अपनी जरूरत होती है तो वहीं पर यह उद्धव को कृष्ण भेजते हैं. एक समय कृष्ण जब गुरु जी के यहां से, सांदीपनी मुनि के यहां से विद्या शिक्षा लाभ कर 64 प्रकारों की कलाएं लौटे, तो अपनी अट्टालिका पर अपने महल के ऊपर में भाग में खड़े हुए और जमुना की तरफ में देखा, उत्तर की तरफ में वृंदावन को देखा, वृंदावन का स्मरण हो रहा, आंख से आंसू आने लगे। और उसी समय उद्धव जी वहां पर पहुंचे, कृष्ण कहाँ गए, वेर इज कृष्ण, वेर इज कृष्ण, ही सॉ दैट कृष्ण इज वीपिंग बिटरली। उद्धव टोल्ड, व्हाई यू आर वीपिंग सो बिटरली? और उद्धव जी, मेरे पिता माता मेरे विरह में तड़प रहे हैं, उनको
संतना
वो बीरा में तड़प रहे हैं। ओ मोर उनको संतना देना है, तुम्हारे अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं है जो उनको संतना दे सके। और उनसे भी बड़ी बात है, हमारे बीरा में सबसे जो तड़पता है, बाबा जी और पिताजी तो करते हैं, इनसे भी कोटि गुण अधिक गोपियां मेरे लिए तड़प रही हैं। उनके प्राण आज गए कल गए ऐसे आए, इसलिए जाओ उनको भी सांत्वना देकर के स्थिर करो। कृष्ण उस समय सोचा, उद्धव को यदि हम गोपियों की प्रेम पाठशाला में भेज दें, जहां पर कि राधिका जी क्या है,
प्रिंसिपल है,
प्रिंसिपल है, ललिता विशाखा जी एक एक डिपार्टमेंट की हेड है प्रेम की, तो वहां कुछ प्रेम का पाठ पढ़ करके आएगा तो उससे कुछ मैं अपने हृदय को खोल करके कर सकूंगा, अपने हृदय का भार हल्का कर सकूंगा। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देन आई विल टेल एनीवन टू ट्रांसलेट, अदरवाइज ओके। तो गोपियां हमारे बीरा में तड़पती तो हैं, किंतु एक दूसरे से अपने बीरा को कह करके व्यथा को और अपनी व्यथा को भार को हल्का करती। नदी में यदि बाढ़ आ जाए तो अपने दोनों किनारों में पानी को फैला देती हैं, तो उस तरह से इसको ब्रज में भेजें, वो प्रेम का पाठ पढ़े, जब आएगी आएगा तो उससे अपने हृदय में क्या मेरे गोपियों के लिए विरह है, मेरा हृदय कैसा तड़पता है, ये मैं नहीं समझता। इसलिए उद्धव आ जाने पर अपना भार कुछ हल्का करूँगा। उद्धव को भेजा, सोने के रथ पर बैठा कर और भेजा। जब वो गए तो शाम हो रही थी। अर्जुन उद्धव जी ने सोचा, जाता रहा हूं ब्रज में किंतु बिना कृष्ण का मैं एक सेकंड भी नहीं रह सकता। कृष्ण ने कहा, जब उद्धव तुम ठीक से नहीं सोच रहे, मेरा एक टुकड़ा मन यहां है मथुरा में, मैं तो सारा शरीर से वहीं पर हूं, तन से मन से वचन से सब प्रकार से वहीं, अतः तुम वहां जाकर के देखोगे अनुभव करोगे। जब गए तो गोधूली थी, ब्रज में गायें गोचारण करने के बाद में लौट रही थी, उनके पैरों से धूल उड़ रही थी, वे लोग बंसी बजाते हुए चले आ रहे हैं, देखा जे सांड गायों के लिए लड़ रहे हैं। अरे कृष्ण तो यही है, हमने सोचा ये मथुरा चले गए, मथुरा तो गए नहीं, यहीं पर हैं। थोड़ी देर के बाद में लीला समाप्त हो गई, नंद के दरवाजे पर पहुंचे। नंद बाबा ने कृष्ण का मित्र समझकर बड़ा आदर किया। घर में तो कुछ पकाने के लिए बर्तन था नहीं, किसके लिए पकाए? मैया जसोदा रोते रोते अंधी हो गई है। चूल्हे पर मकड़ों ने जाल बिछा दिया, बर्तन औधे पड़े हैं, मजे तक नहीं, साफ नहीं हुए, किसके लिए भोजन बने? मेरा लाला चला गया और मैं किसके लिए बनाऊं? और जाकर के बैठे उनके पास में नंद बाबा। नंद बाबा पूछना चाहते हैं कि हमारा लाला कैसा है? लाला मैंने समझते हैं, लाला मीन्स सन,
डार्लिंग सन।
तो कैसा है? किंतु बोल नहीं पाते, गला भर आता। तो अंत में कहा, हमारे वसुदेव भैया जी ठीक हैं, उनका कुशल तो है, वसुदेव इज ओके। बोले, मैं कृष्ण को भूल जाने के लिए चला गया, भूलने के लिए नदी के किनारे जाता हूँ यमुना। वहाँ देखते हैं कि नदी की प्रत्येक धाराएं, वहाँ की धूली कणें बोल रही हैं और कह रही हैं, कृष्ण यहीं पर खेलता था, यहीं पर गोपियों के साथ में, सखाओं के साथ में स्नान करता था, पीड़ा था। कृष्ण का स्मरण हो जाने समय फिर वहाँ से गोवर्धन चला जाता है, जो वहां पर भूल जाऊं, हाय हाय। वहां तो और, वहां पर कंदराएं कह रही हैं, कुंज वहां पर हैं, वो कह रहे हैं, या यहां पर सखाओं के साथ में गोचारण करने के लिए गाय को साथ, गोपियों के साथ में कुंज की लीलाएं होती, मैं कहां जाऊं जहां पर की शांति मिले, कृष्ण का स्मरण न हो। उद्धव जी ने कहा, कृष्ण ने इनको सांत्वना देने के लिए भेजा है, आज कुछ तो समझाना होगा। ये तो कृष्ण के विरह में तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, अझोर नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, तो मैं क्या कहूं? रोइए मत, कृष्ण आपका बेटा है, भगवान है, ऐसा कहूं? बड़ा सौभाग्यवान है आप जी, कृष्ण स्वयं भगवान होकर के आपके पुत्र हुए हैं। अंत में बहुत विचार करके बोले, नंद बाबा, यदि जीवन में किसी का सौभाग्य है तो आप और यशोदा, आपका और यशोदा का। क्यों क्यों बेटा, क्यों है? तो कृष्ण आपका पुत्र है, भगवान है, भगवान के रूप में आया। ओह, हमारा बेटा भगवान था, पहले तो मैं अपना केवल बेटा समझता था, और वो था भगवान, हम उसकी सेवा नहीं कर सके, इसलिए हमारे यहां से चला गया। खूब रोने लग गए, तड़फने लग गए, बोले, ओहो, जगत में एक बाप था, वो कौन? महाराज दशरथ। राम के वियोग में, बन जाने के बाद में, हा राम प्राणों को छोड़ दिया। अभी तक मेरे विरह में प्राण नहीं निकल रहे हैं, और रोने लगे। इसी प्रकार से सारी रातें बीत गई, एक रात बीत गई। सवेरा हुआ, उद्धव जी पास ही में कुंड है, आजकल उसका नाम कृष्ण कुंड, उसमें स्नान किया, देखा एक कदम्ब का वृक्षों का वन है, उसमें कुछ गोपियां हैं, कुछ गोपियां हैं, रथ को उन्होंने देखा। अरे, ये सोने का रथ कहाँ से आया? ओ एक क्रूर व्यक्ति आया था पहले, क्रूर माने अक्रूर, क्रूर व्यक्ति आया और यहां से हमारे प्राणों को कृष्ण को हरण करके लेकर के चला गया। फिर वो क्यों आया? एक दूसरी सखी ने कहा, इसलिए आया कि आज 13वां दिन है, मरने के बाद में पिंड दान किया जाता है, तो वृंदावन में पिंड दान के लिए कुछ नहीं है, इसलिए परिवार वालों ने भेज दिया जाओ। वहां से बहुत सी गोपियां मरी हुई पड़ी होंगी, उनका
हृदपिंड,
हृदपिंड माने कलेजा ले आना और कंस का तर्पण करेंगे, इसी से सोने के रथ में आया है। क्यों आया? दिखलाने के लिए। हमारा नौकर भी सोने के रथ में चढ़ता है तो कृष्ण की कितनी बड़ी महत्ता है। उद्धव जी बोले, हमारा सोने के रथ पर चढ़ करके आना ठीक नहीं हुआ, हमें तो साधारण रूप में आना चाहिए था पैदल, किंतु कृष्ण के कहने से आ गया। थोड़ी देर के बाद में उद्धव जी ने देखा, गोपियों ने कहा गया, अच्छा देखो देखो तो है कौन, ये कृष्ण है किंतु कृष्ण नहीं है, कृष्ण सांवला है, सांवले रंग का, किंतु ये कृष्ण नहीं है, कृष्ण ही जैसा है, उसके कपड़े पहने हैं, उसका सब कुछ, उसका सब कुछ अलंकार इत्यादि सब धारण किए हुए, हो न हो उनका दूत है। उस दूत को लेकर के वो आगे बढ़ी और वहां पर देखा क्या, सोने की एक पुतली जैसी महिला पड़ी हुई है, अचेतन है, रोई लगा करके देखा जे जीवित तो है कि तो मरने मरने को है। उद्धव जी जरा दूर में बैठ गए और उसी समय में एक भौरा कहीं से काला उड़ता हुआ आया, उसने ध्यान में देखा, कृष्ण तो बिना रमणियों के रह नहीं सकता, ब्रज में हम तो 16,000 की कितना कितने कोटि गोपियां थी, अब वहां पर राजधानी में मथुरा में गया है, वहां पर राजकुमारियां होंगी और उनके साथ में बैठ करके विहार कर रहा है, उसे बड़ा अभिमान हुआ और भौंरा उड़ते 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 उसके पैरों के नीचे समझा जी कमल का फूल है, इसलिए उसमें प्रवेश करने के लिए, मधुपान करने के लिए उसके भीतर में भन भन करने लगा। उनको बड़ा मान हुआ, मान मीन्स मान मैंने क्रोध नहीं, जगत में मान नहीं है, केवल अभिमान है। एक शुद्ध भक्त के बिना, विशेष करके गोपियों के बिना मान होना, हमें मना करके रहेंगे जरूर मनाएंगे, जब ऐसा हो जाता है तब कोई मान करता है। मान में भर भागवत का भ्रमर गीत, वेणु गीत, जुगल गीत,
गोपी गीत,
गोपी गीत, ये गीत प्रधान है, गोपियों के मुख से निकले हैं, इनको निकाल दिया जाए तो भागवत का 5 प्राण निकल जाएगा, कुछ अधिक उसकी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। तो करें मधुप, अरे मधुपान करने वाला, मधुपुरी से आया है, वहां पर मधु की दुकान है ना, उसका दुकान करने वाला कौन है? ओ ओके
काले मधुपकित व बंधो,
मधुपकित व बंधो कितो माने ठग, ठग वहां का मधुपति कौन? कृष्ण। वो कितो बंधो ठगों का सरदार है, वहां से आया है, उन्होंने दूत के रूप में तुम्हें भेजा है। वो तो बेहोश पड़ी हुई भावावस्था में देख रही हैं, और भावावस्था में ही बोल रहे हैं, उन स्वाभाविक रूप में नहीं। देखो दूत को कैसे मनाने के लिए आया जाता है, समझो। ये दूत का आने का तरीका नहीं है, हमको सांत्वना देने के लिए तरीका नहीं है। क्यों? अपनी गुंफों पर कुंकुम कम लगाया। ये जानते हो कुंकुम कौन कौन है? नहीं स्वामिनी जी, हमारे तो ये अपने आप साधारण भाव से, सहज भाव से, ये गुल्फ वैसे है कुंकुम जैसे रंगी। मैंने तो लगाया नहीं, तू हमसे
झूठ बोल रहा
है, धूर्तता करता है, जरूर तुमने किया। देखो जिसका दूत ऐसा है तो उसका स्वामी कैसे होगा? जदुओं की सभा में उनकी बड़ी विडंबना हुई, लोग कहेंगे जी हमारी स्त्रियों से बातें करता है, तो तुम्हारी पिटाई भी हो सकती है, तुम्हारी बड़ी निंदा होगी। सखत अधर सुधा मपायन को, कृष्ण एक बार अपने अधर का अमृत हमें पिलाया, पागल कर दिया। वो भी क्यों क्यों पिलाया? हमारा धाम अमृत पीने से आदमी मरेगा नहीं, हम मरेंगे नहीं, केवल कष्ट सहेंगे। मृगुरु कपेन्द्रम बिब्बधे लुब्ध धर्मा, ओहो एक काला था जो माता पिता के आदेश से अपने स्त्री को लेकर के वन में गया, और वहां जाकर के बाली का वध किया। बंदर का कोई वध नहीं करता है, ऐसा निष्ठुर। और अपने को स्त्रियों का पति मानता है,
स्त्री जीत,
किंतु स्त्री जीत स्त्रियों के वशीभूत रहता है। सुपनखा का कान काट लिया नाक, इतना निशुल्क, और कोई उससे शादी ही नहीं करे। एक और काला था, वो बलि बन करके
बामन
बन करके काला भिखारी का वेश सजकर, और उसका सब लोग सब कुछ ले लिया, उसको भी लेकर के बांध दिया। प्रहलाद महाराज ने पीछे से छुड़वाया। सब कालों का ऐसे ही स्थिति है, उनसे कोई मतलब नहीं, किंतु उनकी कथाओं को कैसे छोड़ सकते? जाद अनुचरित लीला करने पीयूष के ब्रट, ओह उनकी उनके ये सब को तो मैं छोड़ सक कृष्ण को छोड़ सकती हूँ हम लोग, किंतु उनकी लीला कथाओं को सुन छोड़ नहीं सकते। जिनके कान में एक बार कृष्ण पहुंचा, कर्ण पीयूष पिप्रुट, तनिक भी उसके गुण चरित्र लीलाओं की कथा, वो घर बार छोड़कर, माता पिता को तड़पते रोते हुए छोड़कर वृंदावन में चला जाता है, खुद तड़पता है, रोता है, कृष्ण हा कृष्ण, उसके लिए कठोर साधन करता है, और घर वाले रोते हैं जी हमारा बेटा चला गया। ये सब लड़के जो आए हैं बहुत अच्छे कुल के, धनी मानी पढ़े लिखे लड़के, कोई इंजीनियर, कोई कुछ, कोई कुछ। कृष्ण नाम सुना, हमने हरि कथा सुनाया इनको, पागल हो गए मेरे पीछे, और वृंदावन में चले आए हैं हमारे पास में। माता पिता तो रो रहे हैं और ये भी रो रहे हैं, ये रो रहे हैं कृष्ण के लिए और वो रो रही है जो हमारा बेटा गया। कोई खबरदार उनकी कथाएं ना सुने आप लोग, हम जो आए हैं सावधानी से सुनना, मन को दूसरी जगह रखना और केवल कान रखना, सुनना उसको लेना मत, नहीं तो फिर बावरी हो करके, बावरा हो करके, पागल हो करके कृष्ण के लिए चल पड़ेंगे। और वृंदावन में फिर शरण, जमुना के किनारे वहीं पर कहीं से भीख मांग करके दो रोटी फुलका ले लिया और बस कृष्ण 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 रोते। ओ पूछ रहे ब्रह्मश अपि मथुपुर जाय आर्य पुत्रा धुनास्ते, अजी तुम चला गया था, तुमको धिक्कार दिया मैंने इसलिए चला गया, फिर आया है। अच्छा तो कृष्ण मधुपुरी में आ गए हैं, पढ़ने के लिए गए थे, आ गए हैं, क्या हम लोगों को स्मरण करते हैं, क्या अपने बंधु बांधव माता पिता भाइयों को स्मरण कभी करते हैं, कभी हम लोगों को स्मरण करते हैं कि गोपियां इतना सुंदर हार नहीं गूंथती थे जैसे तुम लोग। आहा इस प्रकार से कहते हुए कब लौटेंगे और हमारे सिर पर अपना अगरु सुगंधित अपनी सर्प जैसी बाहु को हमारे सिर पर रखेंगे और अभय प्रदान करेंगे और फिर वृंदावन छोड़ करके नहीं जाएंगे, ये कह करके बस मूर्छित हो। उद्धव जी ने देखा, वो अद्भुत देखा। आज हमारा पुराण सौभाग्य है कि कृष्ण ने भेजा, आसाम हो चरण रेण विषाम हम श्याम वृंदावन किमत गोल बनलताऊ सधीना, वहो वृंदावन में हमारा परम सौभाग्य होता कि गुल मलता वृक्ष नहीं घास इत्यादि जिस पर गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए जाए अभिसार में, तो उनके चरणों पर गोपियों की धूली मिले, जिसको सूतियां भी नहीं पा सकें, आज हम उसके लिए गोपियां ने वशीभूत कर रखा कृष्ण को। कृष्ण सब समय उनके भीतर में ही है, कहीं बाहर नहीं गए। हो वंदे नंद ब्रजम
ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुम
अभिघ्नशः जाथां हरि कथो उद्भूत पुनात भुवनात्। उद्धव जी हाथ जोड़ कर वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम, नंद बाबा के घर में कृष्ण वहां पर हैं, वो किसी के मित्र हैं, किसी के बंधु हैं, किसी के प्रियतम हैं, किसी के बेटा हैं, वो कौन है, पूर्ण ब्रह्म सनातन है। आज गोपियों ने बीरा की अवस्था में जो गीत गाए हैं वो त्रिभुवन को पवित्र करने वाली हैं, उनके चरणों में मैं कोटि कोटि बार नमस्कार करता हूँ। वंशा कल्पतरु भस्य कृपा सिंधु भये वच पतितानां पावने। आज यहीं तक हम कथा समाप्त कर रहे हैं। बहुत प्रसन्नता हुई कि स्वामी जी भी बद्री नारायण में रहने वाले यहाँ पर उपस्थित हो गए। ब्रज की कुछ कथाएं इनको भी हमने सुनाई।
कहेंगे
कुछ
करे? आप मेरे माता पिता हैं। कह रहे हैं कि आप ही मेरे माता पिता है, आपसे मैं सुनने के लिए आया हूँ, कुछ कहने के लिए नहीं।
धन्य है आप दीनता की मूर्ति। मैंने सुना जी आप गए थे हमसे भेंट करने के लिए, बड़े दुख की बात है मैं नहीं भेंट कर सकता। आज अच्छा हुआ जी आप यहीं पर आ गए, आप लोग संत हैं।
जो कुछ सीखा है आप ही लोगों से सीखा है।
ठीक है, आपका धन्यवाद। आज यहीं तक रहे। जय जय राधा रमन हरि। आज समाप्ति हो गई, कुछ कहना है?
कितना दिन
फिर आ
जाएगी? कितना दिन अभी? कितना दिन?
और
एक हफ्ता,
छह दिन
मंगलवार को।
जय जय राधा।